महाबंधन पुस्तक छठवी लेक्चर नंबर 9। ओम नमः सिद्धे प्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकं महाधवलविख्यातं महाबन्धं नमाम्यहम्। यह श्री भगवान भूतबलि भट्टारक प्रणीत महाबन्ध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसमें छठवीं पुस्तक में चौथा प्रदेश बंध अधिकार चल रहा है और अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 51 पर। 51 ये भाव प्ररूप ना हम देख रहे हैं। भाव दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओव और आदेश। ओव से आठ कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध के बंधक जीवों का कौन सा भाव है, कहते औदयिक भाव है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए। फिर जघन्य का प्रकरण है, निर्देश दो प्रकार का है, ओव और आदेश। ओव से आठों कर्मों के जघन्य और अजघन्य प्रदेश बंध का कौन सा भाव है, कहते औदयिक भाव है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए। 23 प्ररूपणाएं हुई यहाँ। अब अल्प बहुत्व प्ररूपणा नंबर 24। ये प्रदेश बंध में 24 जो अनुयोग द्वार हमने देखे थे उस संबंधी 24 नंबर का। अल्प बहुत्व दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओ और आदेश। ओव से यानी अभी ये मूल प्रकृतियां हैं, तो उनमें कौन से प्रकृतियों का प्रदेश बंध कम है, कौन सा ज्यादा है। ओव से आयु कर्म का उत्कृष्ट प्रदेश बंध सबसे स्थूल है। उत्कृष्ट में अल्प बहुत्व लगा है। मात्र प्रदेश बंधों में हमने देखा था मुनि कर्म का उत्कृष्ट प्रदेश बंध विशेष अधिक है। नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध दोनों ही तुल्य होकर विशेष अधिक है। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध तीनों ही तुल्य होकर विशेष अधिक है और वेदनीय कर्म का उत्कृष्ट प्रदेश बंध विशेष अधिक है। ऐसा क्यों कहा होगा? देखो, आयु का तो सबसे स्तोक है, तो जाहिर है वहाँ आठ कर्म बनते हैं और फिर भी उसकी यानी स्थिति कम बनती है तो प्रदेश बंध भी कम। दूसरे नंबर पर मुनि को क्यों लिया? हाँ, उसका कारण क्या है? अश्विन भाई बता रहे
नहीं?
ने वो कह रहे थे तीसरे नंबर पर आना चाहिए था, क्योंकि हमेशा
नागौर गोत्र का पहले रहता है। अच्छा, उत्कृष्ट प्रदेश बंध,
देखो उत्कृष्ट प्रदेश बंध कहाँ होता है? तो छह कर्मों का होता है दसवें गुण स्थान में। हाँ। और मोनिय का होता है जहाँ सात कर्म बन रहे,
तो वहाँ पे ज्यादा दृष्टि से।
यानी उसका अर्थ क्या है? मोनिय का उत्कृष्ट है वो अन्य छह से कम है, क्योंकि जब सात कर्म बन रहे तब मोनिय में जाएगा उत्कृष्ट योग के साथ, और जब छह कर्म बन रहे हैं तो अन्य छह में जाएगा अपना अपना उत्कृष्ट। اس لیے مونیہ کو سیکنڈ نمبر پر رکھا. اب جو چھ ہے اس میں آپس میں دیکھنا ہے, تو نام گوتر بی سی ہے اور وہ ہے تی سی ہے, استھتی کے انوسار پردیش بندھ ہوتا ہے, اس لیے ان کو ادھک بھاگ چلا جائے گا. ہر مہینے اور ان میں بھی ویدنی کرم کا اتکرش بندھ وشیش ادھک اس لیے کہا ہے, چھ کرموں کا بندھ ایک ساتھ ہو رہا ہے, پرنتو ہم نے دیکھا تھا ہمیشہ ویدنی میں زیادہ ہوتا ہے گیانا ورنادی کی اپیکشا, ایز اٹ از کسی بھی گنستھان میں ہم نے دیکھا تھا ویدنی کا زیادہ ہوتا ہے. اس پرکار اوگ سے اوگ کے سمان منوشتری, اب یہ ایسی مارگنا ہے کہ جہاں شرینی کی باتیں دسواں گنستھان ہے, ایسی مارگنا ہے ان میں یہی بات گھٹت ہوگی کہ منوشتری پنچیندری دوک ترس دوک پانچوں منو یوگی پانچوں وچن یوگی کا یوگی اوتارک کا یوگی اپوگت ویدی لوبھ کشائے والے آبھی نبودی گیانی شت گیانی اودھی گیانی من پری گیانی سنیت چکشو درشنی اچکشو درشنی اودھی درشنی شکل لیشا والے بھویہ سمیہ دشٹی کشائک سمیہ دشٹی اپشم سمیہ دشٹی سنگی اور آہارک جیون میں جاننا چاہیے. ابھی ہم الپ وہ تو پڑھ رہے ہیں 52 پیج پر, سب سے کم آیو کرم کا لیا وہ تو ظاہر ہے کیونکہ اس کی استھتی کم بنتی ہے اور ہمیشہ اس میں کم پردیش بند ہوتا ہے. یہاں دوسرے نمبر پر مونی کو لیا ہے, اس کی ہم چرچا ابھی ہم نے کی. مونی کو دوسرے نمبر پر کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ انیہ چھو کرموں کا اتکرش تو دسویں گنستھان میں ہوتا ہے اور مونی کے اتکرش نیچے کے کسی بھی گنستھان میں ہوگا, سنگی پنچندی پریاپت ہو کر وہ باقی کنڈیشن لگا لینا اس کے لیے. تو مونی کرم کا اتکرش پردیش سیکنڈ نمبر پر آ گیا. ایسے کسی ایک سمے میں اگر اس کا ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے, ایک کسی سمے مان لیتے کہ آٹھ کرم بند رہے تو آیو میں استوک ہے, نام کرم میں اس سے ادھک ہے, پھر گیانا ورنادی اس میں ادھک, اس طرح سے وہاں مونی میں ادھک اور ویدنی میں سب سے زیادہ. اب یہاں اتکرش پردیش بند کا سوامی دیکھتے ہوئے مونی کرم نیچے کے گنستھانوں میں اس لیے اس کو سیکنڈ نمبر پر لیا. اب جو چھ کرموں کا اتکرش دسویں گنستھان میں ہے, تو دسویں گنستھان میں ہے, اب اس میں الپ بہتو لگانا ہے. تو نام گوتر کا وہ بی سی ایم میں ویسے بھی کم ہوتا ہے, گیان اور درشن اور انتر تینوں میں سمان ہو کر وشیش ادھک ہوگا, ہمیشہ ویدنی میں ادھک ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے, اس اپیکشا ویدنی میں ادھک ہوگا. یعنی کارن یہی ہے کہ چھ کرموں کا ہم دسویں میں کمپیر کریں گے اور وہاں پر الپ بہتو ان میں دیکھیں گے. اور یہ جو ابھی مارگنا ہم نے پوری گنائی ہے, اس میں وہ دسواں گنستھان بھی ہے اور نیچے کے گنستھان بھی ہے. یعنی وہاں یہی الپ بہتو گھٹت ہوتا ہے, کیول اپگت ویدی میں آیو کرم کا بندھ نہیں کہیں گے. شیش نیچے سے پانچویں لائن نرک گتی آدھی سے لے کر, یعنی ان مارگناؤں کو چھوڑ کر جو باقی شیش مارگنا ہے, اناہارک مارگنا تک کے جیووں میں آیو کرم کا اتکرشٹ پردیش بندھ سب سے استوک ہے. اس سے نام اور گوتر کرم کے اتکرشٹ پردیش بندھ دونوں ہی پرسپر تلیہ ہو کر وشیش ادھک ہے, جیسے بھی ڈسٹریبیوشن ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ ان مارگناؤں میں شرینی نہیں ہے. شرینی نہیں ہے, دسواں گنستھان نہیں ہے. ہاں پہلے اوہ کی بات, پرنتو اوہ کے سمان کون سی مارگناؤں میں ہوتا ہے وہ تو بتا دیا. اب انے جو مارگنا ہے ان میں کیا وشیشتا ہے کہ سات کرم بندے گی یا آٹھ کرم بندے گی, وہاں وہ چھ والی بات نہیں گھٹت ہوتی ہے کیونکہ دسواں گنستھان نہیں ہے, اس لیے اس میں آیو کرم کا اتکرش پردیش بندھ سب سے استوک ہے. फिर नाम और गोत्र का उत्कृष्ट प्रदेश बंधन दोनों ही परस्पर तुल्य होकर विशेष अधिक है। इससे ज्ञानावरण दर्शन और अंतराय कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंधन तीनों ही परस्पर तुल्य होकर विशेष अधिक है। इनसे मोहिनी कर्म का उत्कृष्ट प्रदेश बंधन विशेष अधिक है और इससे वेदिनी कर्म का उत्कृष्ट प्रदेश बंधन विशेष अधिक है। हमने देखा था कि जैसे कहीं पर भी बंध होता है, अभी दसवां गुण स्थान छोड़ो तो इसी पद्धति से उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब जघन्य का प्रकरण, निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। ओह से नाम और गोत्र कर्म के जघन्य प्रदेश बंध सबसे स्तोक है। आयु क्यों नहीं बोलो अभी? यहाँ क्यों नहीं अश्विन भाई? क्योंकि उपपाद योग में इसका जगन्य है, सूक्ष्म योग। आयु जब बनती है तो आगे चलकर बनती है एकांत वृद्धि के बाद, वहाँ का योग असंख्यात गुना ज्यादा हो जाएगा। इसलिए उपपाद के समय कौन से बन सकते हैं? तो ये बाकी सात बंधेंगे, तो उसमें साथ में लगाएंगे अभी। तो नाम और गोत्र कर्म के जघन्य प्रदेश बंध सबसे स्तोक है। इनसे ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के जघन्य प्रदेश बंध तीनों ही परस्पर तुल्य होकर विशेष अधिक है। इनसे मोहिनी कर्म का जघन्य प्रदेश बंध विशेष अधिक है और इससे वेदिनी कर्म का जघन्य प्रदेश बंध विशेष अधिक है। ये सारे ही उपपाद में है और इससे आयु कर्म का जघन्य प्रदेश बंध कितना लिखा? असंख्यात गुना है, क्योंकि आयु कर्म का जघन्य जो है शरीर पर्याप्ति यानी पंथर्ड जो है लब्धि पर्याप्तकों में तृतीय त्रिभाग के पहले समय में होता है। इस प्रकार ओह के समान अनाहारक पर्यंत सब मार्गणाओं में जानना चाहिए, यानी जहां जहां उपपाद योग घटित होता है ऐसी मार्गणाएं लेना। किसी भी गति हो, कोई भी पंचेंद्रिय हो, कोई भी त्रास हो, उनका अपना अपना उपपाद योग सबसे जघन्य होगा। जहां भव का पहला समय नहीं घटित होता है ऐसी मार्गणाओं में अलग बात होगी। ओग के समान सभी मार्गणाओं में जानना चाहिए, इतनी विशेषता यानी एक्सेप्ट कौन कौन है वो बताएंगे। यानी ओग के समान किसमें होगा? जहां उपपाद योग संभव है। तो विशेषता किसमें है, किसमें ये बात घटित नहीं होगी? पांचों मनोयोगी, एक कॉमा लगा लो, पांचों वचन योगी, आहार का योगी, आहार मिश्र का योगी, विभंग ज्ञानी, मन परे ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत और संयता संयत जीवों में आयु कर्म का जघन्य प्रदेश बंध सबसे स्तोक है। एक तो वो बनती तो आठ कर्म बन जाए और परिणाम योग में जब जघन्य होगा और जब आठ कर्म बन रहे हैं तब आयु में उसका हिस्सा सबसे कम दिया जाएगा। इससे नाम और गोत्र कर्म के जघन्य प्रदेश बंध दोनों ही परस्पर तुल्य होकर विशेष अधिक है। इनसे ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्म के जघन्य प्रदेश बंध तीनों ही परस्पर तुल्य होकर विशेष अधिक है। इससे मोहिनी कर्म का जघन्य प्रदेश बंध विशेष अधिक है और इससे वेदिनी कर्म का जघन्य प्रदेश बंध विशेष अधिक है। तो अभी जो हमने मार्गणाएं देखी थी, संयत आदि, संयत आदि को ले लेना, वचन योगी, मनोयोगी, उनमें ये कहाँ होगा उत्कृष्ट प्रदेश बंदर? ये अपनी जगन्य की बात चल रही है, जगन्य की बात, उत्कृष्ट तो ऊपर होता है, यहाँ जगन्य की बात है। यानी जब योग जगन्य है, परिणाम योग है, जिसको गोलमान योग कहते हैं, यानी वहां जो हमने जब जब बंद होता है इसी प्रपोर्शन में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वही अल्प बहुत बलिया है। इस प्रकार 24 संयोग द्वार समाप्त हुए, यानी मूल प्रकृति संबंधी प्रदेश बंद के 24 संयोग द्वार यहाँ समाप्त होते हैं। अब भुजगार बंद कहेंगे, मूल प्रकृतियों में कैसे लगाएंगे भुजगार बंद? जब 6 प्रकृति का बंद हो रहा था और 7 होने लगा, 10वें से नीचे गुण स्थान में आ गए भुजगार, या जब 7 का बंद हो रहा है, आयु बंद होता है, तो 8 कर्मों का बंद हो जाएगा, उसको कहना है, वो तो प्रकृति बंध में चला जाएगा ना। प्रदेश बंध में योग बढ़ने से भुजगार होगा, हाँ योग बढ़ने से भुजगार हो। मैंने जो बताया वो प्रकृति बंध की बात थी, वो अलग है। एकांत वृद्धि में लगातार भुजगार है, उपवास से एकांत में आए तो भुजगार हुआ एकांत से, हाँ, और परिणाम में भी भुजगार अल्पतर होते रहते हैं। यानी अवस्थित वाला भंग केवल परिणाम में होगा, गोलमान में, एकांत में नहीं होगा। वो जगन्य का जो, वैसे तो 8 समय तक भी होगी ना, हम जगन्य उत्कृष्ट में 4 समय लगा रहे, लगातार योग के रहने के समय है 8। अभी हम इसको पढ़ेंगे और ख्याल आ जाएगा, वो भुजगार के काल में आ जाएगी बात। देखो यहां से भुजगार बंध का प्रकरण है, उसमें यह अर्थपद है, अर्थपद यानी उसके कुछ नियम बताएंगे। जो इस समय प्रदेशाग्र बांधता है, यानी प्रदेश बंध कितना होता है, नंबर ऑफ परमाणु कितने बनते हैं, वह अनंतर अपकर्षित व्यतिक्रांत समय में बांधे गए अल्पतर से बहुतर को बांधता है, यह भुजगार बंध है। व्यतिक्रांत यानी जो बीत गया है समय, अनंतर व्यतिक्रांत यानी पीछे वाला, पूर्व में गया है, पूर्व प्रायर वाला, वहां जो कम था इस समय वो अधिक बांध रहा है। यानी वर्तमान में जो प्रदेशाग्र यानी प्रदेश का बंध हो रहा है, प्रदेशाग्र कहने की पद्धति है, पहले शब्द बहुत बार है, प्रदेशाग्र यानी प्रदेश परमाणु, यानी वर्तमान में पेज नंबर 53 भुजगार बंध का प्रकरण अपना शुरू हो गया। अभी भुजगार का अर्थ क्या है, अभी प्रदेश बंध के प्रकरण में वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, तो पूर्व में अनंतर पूर्व समय से यानी इमीडिएट प्रायर समय से वर्तमान में बढ़कर बांधा है। पहले समय में प्रदेश यानी परमाणु का बंध कम, संख्या कम थी बंधे हुए, अब अधिक हुए तो कहेंगे भुजगार। अपकर्षित है ना, बीता गया हुआ है। अपकर्षित यानी वहाँ कम हुआ था इसलिए अपकर्षित कहा, अपकर्षित व्यतिक्रांत समय, यानी वहाँ कम बांधा था, यहाँ अधिक बांधा, ये भुजगार हुआ। अल्पतर का प्रकरण है, उसमें यह अर्थपद है। अभी अल्पतर किसको कहना ये बता रहे, जो इस समय प्रदेशाग्र बांधता है वह अनंतर उत्कर्षित व्यतिक्रांत समय में बांधे गए, बात है ना, यहाँ उत्कर्षित व्यतिक्रांत का, यानी पिछले समय की बात है, कौन से यानी पूर्व समय की बात है, परंतु उस समय में बांधे गए बहुतर से अल्पतर को बांधता है, यानी वर्तमान में कम बांधता है, वह अल्पतर बंध है। अब अवस्थित को कहेंगे, अवस्थित का प्रकरण है, अवस्थित बंध का प्रकरण है, उसमें यह अर्थपद है। यानी अवस्थित के बारे में ऐसा नियम है, जो इस समय प्रदेशाग्र बांधता है वह अनंतर उत्कर्ष को प्राप्त हुए या अपकर्ष को प्राप्त हुए व्यतिक्रांत समय से उतने ही प्रदेशाग्र बांधता है, यह अवस्थित बंध है। यानी जितना था पूर्व समय में उतना ही बांधता है। अवक्तव्य बंध का प्रकरण है, उसमें यह अर्थपद है, जो अबंध से बंध करता है यह अवक्तव्य बंध है। इस अर्थपद के अनुसार ये 13 अनुयोग द्वार है, समुद कीर्तना से लेकर अल्प बहुत्व तक जो अभी आने वाले हैं। मैंने अभी भुजगार का नंबर 1 हम देखेंगे। समुद कीर्तना में हमेशा क्या बताते हैं, बस है भुजगार है, अल्पस्थित है, अल्पतर है कह देना, ये समुद कीर्तना है।
तो भुजगार का एक है
समुद कीर्तना, सबके लिए बताएंगे। भुजगार बंद भी होते हैं, अल्पतर भी होते हैं, अवस्थित भी है, ओग में तो सभी पास हो गए। तो समुद कीर्तना की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग से 8 कर्मों के भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य पद के बंधक जीव है, वह है। तो ओग में भुजगार कहाँ होगा, जहाँ जहाँ वो योग बढ़कर होगा तो वहाँ भुजगार होगा। अल्पतर कब होगा, जब योग कम होगा, अल्पतर कहलाएगा। अवस्थित मात्र घोलमान योग में अवस्थित वाला भी होगा। अवक्तव्य कब होगा, 11वें में से 10वें में आया तो, या 10वें में से 9वें में आया तो मोहिनी का होगा। आयु का तो जब बंध शुरू होता है तो अवक्तव्य होता ही है। इस प्रकार कहाँ कहाँ ये बात घटित होगी, ऐसा ही कथन। तो मनुष्यत्रिक, क्योंकि इसमें श्रेणी है ना, उपशम श्रेणी से उत्तर कराते। पंचेंद्रिय द्विक, त्रसद्विक, पांचों मनुयोगी, पांचों वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, अपगत वेदी, अभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी, संयत, संयत कहने संयम, केवल संयम लिखा, सामयिक नहीं लिखा, संयत यानी सभी गुणसान होते, उसमें भी ये बात कटी है। चक्षु दर्शनी, अचक्षु दर्शनी, अवधि दर्शनी, शुक्ल लेशा वाले, भव्य सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि, संगी और आहारक जीवों में जानना चाहिए। क्यों ऐसा, क्या उसमें उपशम श्रेणी है, इसे 8 कर्मों में घटित होगी। वैक्रिक मिश्र का योगी, आहारक मिश्र का योगी, कार्मण का योगी और अनाहारक जीवों में 7 कर्मों का एकमात्र भुजगार पद है। देखो देखो ये बहुत अच्छी बात बताए। देखो क्या है, पहले समय में उपपाद योग होता है और इसमें एकांत वृद्धि के स्थान है। वैक्रिक, जब तक वैक्रिक मिश्र है, परिणाम योग इसमें है ही नहीं है। इसमें एक उपपाद हो सकता है, पर उपपाद से जब एकांत वृद्धि होगी तब भी बढ़कर होता है, भुजगार ही कहलाएगा। उपपाद नहीं भी होगा क्योंकि कारमाण होता है, वहां उपपाद कारमाण में चला जाएगा। समझ में आती बात। देखो भव के पहले समय में जो योग होता है वो उपपाद योग, वो सबसे जघन्य होता है। दूसरे समय से एकांत वृद्धि वाला, एकांत वृद्धि का अर्थ है प्रति समय असंख्यात गुणा बढ़ता है योग, यानी भुजगार होता है। यानी इसमें वो परिणाम कब शुरू होता है, शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर, वहां तो योग पलट जाएगा ये। इसलिए इसमें कौन से हो गए, भुजगार ही हो गए।
तो ये
एकांत वृद्धि वाले हैं सारे। कभी कभी वैकृत मिश्र के पहले समय में जो रुजु गति से जाता है ना, उसी में समय उसका भव पहला शुरू होता है, वहां उपपाद हो सकता है। उपपाद भले हो पर सेकंड समय में उसका फिर एकांत वृद्धि वाला होगा, जो असंख्यात गुणा वाला होता है उपपाद से भी।
औदारिक मिश्र को क्यों छोड़ा?
हाँ बोलो, आप ही बोलो, औदारिक मिश्र को क्यों छोड़ा, आप कह सकेगी? लब्धिया पर्याप्त है और उसके आयु के तृतीय में, वन थर्ड में गोलमान योग शुरू हो जाता है। देखो औदारिक मिश्र को क्यों छोड़ा ऐसा प्रश्न था, तो औदारिक मिश्र तो लब्धि अपर्याप्त के भी होगा और निवृत्ति अपर्याप्त के भी होगा। निवृत्ति अपर्याप्त के वो एकांत वृद्धि वाले हो गए, परंतु जो लब्धि अपर्याप्त जीव है औदारिक मिश्र ही उनके होता केवल, तो उसके 2/3 बीत गए और 1/3 बाकी है, तब उनका गोलमान योग शुरू हो जाता है, क्योंकि आयु का बंध तो उसी में होगा उनका। अब ये जो हमने 4-5 मार्गणाएं देखी, इनमें गोलमान योग होता ही नहीं, एकांत वृद्धि वाले होते हैं। कारमान में भी अगर 3 समय का भी कारमान होगा तो पहले समय में उपपाद होगा और फिर आगे एकांत वृद्धि चालू हो जाएगी, इसलिए उसमें मात्र भुजगार पद है, शेष नरक गति से लेकर असंगी तक की मार्गणाओं में 7 कर्मों के भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पद के बंधक जीव है, क्योंकि उनमें सभी है ना, उसमें उपपादक भी है, एकांत वृद्धि भी है, गोलमान भी है, परंतु देखो उसमें अवक्तव्य नहीं लिया क्योंकि उसमें श्रेणी नहीं है। 7 कर्मों के लिए अवक्तव्य नहीं होगा, परंतु आयु कर्म के लिए तो अवक्तव्य सभी मार्ग नाम है। कर्म का भंग होगा के समान है, यानी आयु में भुजगार भी होगा, अल्पतर भी होगा, अवस्थित भी होगा, अवक्तव्य भी होगा। किसमें वैकल्पिक नरक गति आदि अन्य मार्गणाओं में, कहीं पर भी अन्य सभी मार्गणाओं की बात चल रही, आयु जहाँ कहीं भी बनती है।
अच्छा, वो
ये हो गया ना, शेष लिखा ना, शेष नरक गति से लेकर, हाँ आयु कर्म का भंग वो गति समय। और ये वैकृत मिश्र, आहारक मिश्र वगैरह जो है ना, अभी स्वामित्वानुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, ये भुजगार नंबर 2 ना, ओवर आदेश, यानी ये जो भुजगार वगैरह कहा वो उसके स्वामी कौन है उसको बताएंगे। ओग से 7 कर्मों के भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पद का बंधक कौन है, अन्यतर जीव इन 3 पदों का बंधक है, यानी 7 कर्मों के भुजगार, अल्पत और अवस्थित तो होते ही रहते हैं, जो गोलमान योग है वहां तो अवस्थित भी होता रहेगा। अवक्तव्य पद का बंधक कौन है, अन्यतर गिरने वाला उपशामक मनुष्य और मनुष्यनी तथा प्रथम समयवर्ती देव, उपशम श्रेणी से मरकर वहां गया है ना, अवक्तव्य पद का बंधक है। आयु कर्म के भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पद का बंधक कौन है, अन्यतर जीव उक्त पदों का बंधक है, जब आयु का बंध हो रहे तो कभी भुजगार, अल्पतर और अवस्थित होते रहते हैं। अवक्तव्य पद का बंधक कौन है, प्रथम समय में आयु कर्म का बंध करने वाला अन्यतर जीव अवक्तव्य पद का बंधक है, प्रथम समय में नहीं, आयु कर्म का बंध जब शुरू होता है उसके पहले समय। इस प्रकार पंचेंद्रिय त्रसद्विक, क्योंकि उसमें भी उपशामक है ना, काय योगी, लोक कषाय वाले, मोनीय का, अभी लोक कषाय वालों में मोनीय का लिखा, लोक कषाय वाले में वो 6 कर्मों का नहीं लिया, लोक कषाय वाले कहां तक है, 10वें तक, 10वें तक मोनीय का बंधन नहीं है, 10वें में मोनीय का बंधन नहीं है, परंतु लोक कशा के हृदय के होते वो नवे में आए तब मुनि का अभक्त हो। अभिनिवृत्ति ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, चक्षु दर्शनी, अचक्षु दर्शनी, अवधि दर्शनी, यानी ऐसी मार्गना इसमें उपशम श्रेणी घटित होती है। दसवा गुण स्थान भी है। शुक्ल लेशा वाले, भव्य सम्यक दृष्टि, शायिक सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि, संज्ञ और आहारक जीवों में जानना चाहिए। अब मनुष्य त्रिक पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, औदारिक का योगी, मन परे ज्ञानी, संयत और अपगत वेदी जीवों में सात कर्मों के अवक्तव्य पद का बंधक कौन है? उपशम श्रेणी से गिरकर प्रथम समय में इनका बंध करने वाला अन्यतर मनुष्य और मनुष्यनी इनके अवक्तव्य पद का बंधक है। ओग में ऐसा ही बताया था, परंतु ओग में प्रथम समय वर्ती देव को भी लिया। अब यहाँ मार्गना पर्टिकुलर बतल्ला ही दी, मनुष्य त्रिक कहने से वो पहले समय वाला देव ये बात यहाँ नहीं कहनी है। ख्याल में आती है बात? ये फिर दोबारा क्यों लिखा, और लिखा तो डिफरेंस क्या है? क्योंकि ऊपर से देखो, ऊपर से तीसरी लाइन में स्वामित्व की तीसरी लाइन में अवक्तव्य पद का बंधक कौन है? तो अन्यतर गिरने वाला उपशामक मनुष्य और मनुष्य ने, और प्रथम समयवर्ती देव है। अब यहाँ मार्गना बता दी मनुष्य त्रिक की, इसलिए वो प्रथम समयवर्ती देव की बात यहाँ नहीं कहेंगे, बाकी गिरने वाला वही जीव लेंगे। पांच मनोयोगी में भी देखो, मनोयोग के रहते हुए उसका गिरना होता है, परंतु मरकर अगर देव होगा तो उनका अरमान और वैकृत मिश्र हो जाएगा, इसकी मार्गना पड़ती है। वैसे वचन योगी में, काय योगी, औदारिक काय में, मन परे ज्ञानी में कि वो नहीं रहेगा, संयम छूट जाएगा, अपगत वेदी होगा तो वो भी नहीं रहेगा, सवेद शुरू हो जाएगा, इसलिए इनमें केवल वो मनुष्य मनुष्य नहीं, इतना ही लेना, प्रथम समयवर्ती देव इसमें नहीं लेना। इन मार्गनाओं में नहीं लेना। शेष भंग ओह के समान है, शेष यानी आयु कर्म का वगैरह सभी इसमें ऐसा भी घटित हो, केवल अपगत वेदी में आयु कर्म का नहीं कहना है। शेष नारकियों से लेकर अनाहरत तक की मार्गनाओं में, यानी ये जो मार्गनाओं में यहाँ बातें विशेष बता दी है, जो ओह के समान है वो बता दी, और जो अन्यत्र जो है उसमें बता दिया, इनको छोड़कर जो बाकी शेष मार्गना है, जैसे नरगति की बात नहीं ली थी हमने, तीरंज गति की नहीं ली थी, देवगति की नहीं ली थी, तो ये शेष मार्गनाओं में सात कर्मों के भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पद का बंधक कौन है? अन्यतर जीव इनका बंधक है, यानी अन्य सभी मार्गना एक केंद्रीय मार्गना है, ये कायिकों की मार्गना है, उसमें ऐसे ही समझना सर, यानी पांच स्थावर काय में तो ऐसे ही लेना है, तिरस्काय को यहाँ उन्होंने अलग से बताया था। तो इनमें ये भुजगार अल्पत्र अवस्थित चलते रहेंगे, कोई भी जीव इनका बंध है। आयु कर्म का भंग ओग के समान है, यानी आयु कर्म में भी चारों पद होते हैं, वैकृत मिश्र कायोगी जीवों में सात कर्मों के, आहारक मिश्र का योगी जीवों में आठ कर्मों के, तथा कारमान का योगी और अनाहरक जीवों में सात कर्मों के भुजगार पद का बंधक जीव कौन है? अन्यतर जीव बंधक है। आहारक मिश्र में तो आयु कर्म भी बनता है, तो उसमें भी एकांत वृद्धि ही होगी, क्योंकि आहारक मिश्र है, इसलिए उसमें आठों कर्मों के लिए यही कथन होगा कि भुजगार होता है बस। ख्याल में ये बात आहारक मिश्र की। इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ। अब कालानुगम यानी भुजगार में काल बताएंगे, नंबर तीन। यानी भुजगार 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 लगातार होता रहेगा तो कितने काल तक, अल्पतर अल्पतर होगा तो कितने काल तक, अवस्थित रहेगा तो कितने काल तक, कम से कम कितना और अधिक से अधिक, ये बताएंगे आप। तो कालानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। ओह से सात कर्मों के भुजगार और अल्पतर पद का जघन्य काल एक समय, यानी पहले समय से एक ही समय तक भुजगार या अल्पतर किया, फिर अन्य हो गया। और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, यानी अंतर्मूर्त तो लगातार भुजगार 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 हो, तो एकांत वृद्धि में भी होता है, अन्यत्र गोलमान में भी हो सकता है, अल्पतर भी गोलमान में ही होगा, वहां पर भी अंतर्मूर्त तक मैक्सिमम हो सकता है। अवस्थित पद का चालू उपदेश के अनुसार जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 11 समय है। बताएंगे, हमने तो 8 समय तक बातें देखी थी, परंतु यहाँ पर अन्य उपदेश के अनुसार जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 15 समय है। हाँ? और बड़ा हाँ विशेषात बताएंगे। देखिए अवक्तव्य पद का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय, वो तो जाहिर है, ये सात कर्मों में बताएं। आयु कर्म के भुजगार और अल्पतर पद का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अवस्थित पद का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 7 समय है। अवक्तव्य पद का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अब विशेषण, ओम से 8 कर्मों का भुजगार और अल्पतर पद एक समय तक होकर अन्य पद होने लगे, यह भी संभव है, और अंतर्मूर्त तक विवक्षित पद होकर अन्य पद होने लगे, यह भी संभव है, क्योंकि असंख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग हानि आदि का जघन्य काल एक समय है और असंख्यात गुण वृद्धि तथा असंख्यात गुण हानि का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। तथा इन कर्मों का पिछले समय में श्रेणी में क्यों कहा? योग की
नहीं, अच्छा यहाँ पे योग
है। श्रेणी में भी हीनाधिकता होती है, हमने पहले देखा था, आप अनुभव की बात कर रहे हैं और स्थिति की कर रहे हैं। श्रेणी में बढ़ना जो घटना नहीं, बढ़ना भी होगा घटना भी होगा, ऐसा नहीं, यानी चढ़ते समय उठते समय बढ़ता ही जाएगा। हाँ स्थिति अनुभाग में वैसा होगा, यहाँ तो योग कुछ भी हो सकता है, हमने पहले देखा था, यानी जहाँ उत्कृष्ट प्रदेश बन रहे 10वें में, वहाँ पर भी हीनाधिक वहाँ पर भी होता है। तो यहाँ असंख्यात गुण वृद्धि होती रही योग में, या उसके अनुसार प्रदेश बंध उतना होगा, या असंख्यात गुण हानि होती रहेगी, तो मैक्सिमम अंतरकाल तक हो सकती है। तथा इन कर्मों का पिछले समय में जितना बंद हुआ है, अगले समय में भी उतना ही बंद होकर आगे बंध की परिपाटी बदल जाए, यह भी संभव है, और चालू उपदेश के अनुसार अधिक से अधिक 11 समय तक तथा अन्य उपदेश के अनुसार अधिक से अधिक 15 समय तक 7 कर्मों का और आयु कर्म का अधिक से अधिक 7 समय तक लगातार उतना ही बंद होता रहे, यह भी संभव है। इसलिए 7 कर्मों के अवस्थित पद का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 11 या 15 समय, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तथा आयु कर्म के अवस्थित पद का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 7 समय कहा है। यहाँ वृद्धियां हानि न होकर लगातार कितने काल तक उतना ही बंद होता रहता है, इसका विचार कर काल का निर्देश किया है। ये इसमें अपना तो कुछ नहीं चलेगा, पहले परंतु अभी तक हमने जो योग यव मध्य रचना देखी थी उसमें काल यव मध्य और जीव यव मध्य देखे थे, लगातार काल के समय हमने 8 देखे थे और आयु में 7 देखे थे, परंतु आयु के लिए 700 नहीं बताए, मैक्सिमम 700। जैसे हमने देखा ना उत्कृष्ट प्रदेश बंदे लगातार 2 समय तक ही हो सकता है, यहाँ जो लिखा है उसके लिए कोई अपनी तो बुद्धि नहीं चलेगी, परंतु अभी तक हम 8 की बात सोचते आए थे या देखते आए थे। अब वैकृत मिश्र का योगी जीव में 7 कर्मों के भुजगार पद का देखो, वहां केवल भुजगार है ना, तो 7 कर्मों के भुजगार पद का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। इसी प्रकार आहारक मिश्र का योगी जीवों में 7 कर्मों के भुजगार पद का काल जानना चाहिए। आहारक मिश्र का योगी जीवों में आयु कर्म के भुजगार पद का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। इसका अर्थ है समझ में आता है तेज? देखो ये किसकी कंपेरिजन है, वैकृत मिश्र और आहारक मिश्र दोनों में ही एकांत वृद्धि के स्थान है। वैकृत मिश्र में तो आयु बनती नहीं, तो 7 ही कर्मों का भुजगार कितना होगा तो अंतर्मुख, क्योंकि एकांत बुद्धि का काल या वैकृत मिश्र का काल अंतर्मुख है। वैसे आहारक मिश्र का भी काल तो अंतर्मुख है और उसमें भी लगातार एकांत बुद्धि हो रही है, तो कहते हैं आहारक मिश्र में 7 कर्मों में ऐसा ही है क्या, जगन्य भी उत्कृष्ट भी अंतर्मुख तक काल है, लेकिन वहां पर भी मरण नहीं है एक बात, परंतु यहाँ आयु का बंध हो सकता है, तो आयु के लिए अंतर्मूर्त न कहते हुए जगन्य काल एक समय लिया है। क्यों? क्योंकि आहारक मिश्र समाप्त होने को आया और आयु का बंध शुरू हुआ, ये तो हो सकता है ना,
और उसके पहले भी बंध चालू एक समय के लिए गुजर
रहा है, वैसे हो सकता है ना, आयु का बंध वे जरूरी नहीं कि आहार कभी कर रहा है इसलिए आयु का नहीं, पहले हो रहा था यहाँ समाप्त हुआ, या उसको खलास होने का समय आया और वहां से उसने आयु का बंध शुरू किया, इसलिए 2 समय सॉरी 1 समय भुजगार है, पहले जितना था उतना बढ़कर हुआ तो भुजगार का 1 समय होगा। अब वक्तव्य का तो ओके समय नहीं, 1 समय होता ही है। कर्मण का योग्य और अनाहारक जीव में 7 कर्मों के भुजगार पद का जघन्य काल 1 समय है, उत्कृष्ट काल 2 समय है। भुजगार कहने से पहले समय से कंपैरिजन करेंगे, जो 2 समय वाले जो है कर्मण का योग उनमें 1 समय का भुजगार होता है, और जहाँ 3 समय का कर्मण का योग होता है वहाँ 2 समय तक भुजगार कहलाएगा। विशेषार्थ, वैकृत मिश्र का योग और आहारक मिश्र का योग का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है और इनमें 7 कर्मों का एक भुजगार पद होता है, इसलिए इनमें 7 कर्मों के भुजगार पद का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है। आहारक मिश्र का योग में आयु कर्म का भी बंध होता है और यहाँ इनके 2 पद संभव है, भुजगार और वक्तव्य। यह संभव है कि इस योग के 2 समय शेष रहने पर आयु कर्म का बंध हो, और यह भी संभव है कि अधिक से अधिक अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर आयु कर्म का बंध हो। आयु कर्म का बंध कभी भी प्रारंभ हो, जिस समय में इसका बंध प्रारंभ होता है उस समय तो अवक्तव्य पद होता है, अतः अवक्तव्य पद का जघन्य और उत्कृष्ट काल 1 समय का, और द्वितीयादि समय में भुजगार बंध होता है। यदि 2 समय शेष रहने पर आयु कर्म का बंध प्रारंभ हुआ तो भुजगार का इस योग में एक समय काल उपलब्ध होता है और अंतर्मूर्त पहले से बंद प्रारंभ हुआ तो अंतर्मूर्त काल तक उपलब्ध होता है। यही कारण है यहाँ आयु कर्म के भुजगार पद का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है। ऐसे सोचा था ना।
तो यहाँ पे ऐसे भी है कि कभी शरीर बनाता है तभी विशुद्धि पे बनाता है, इसीलिए वहाँ पे आयु का बंद नहीं लिया।
कहा नहीं ले लिया है ना।
नहीं, वो तो अंतिम आरत मिश्र के अंतिम लिया,
कहीं पर भी ले सकते हैं।
पर कभी जो आरत बनाने को जा रहा है जब बनने को जा रहा है तभी विशुद्धि होगी, इसीलिए स्वभाव में नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं, शुरुआत में भी आपने तो पहले बताया ना, पहले कर रहा था और वहाँ समाप्त हुआ आयु का।
नहीं, पर यहाँ पे इसे लिया नहीं,
मैंने फॉर एग्जांपल लिया उन्होंने, ये विशेषार्थ है ना। हाँ, ये हमने देखा कार्मण का योग मिल और अनाहारक का जघन्य काल एक समय, उस योग का ही जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है। जो एक विग्रह से जन्म लेता है उसके तो भुजगार पद संभव नहीं है। यानी जहाँ कारवाण का योग एक समय का है तो एक समय में जो बंद करेंगे कंपेयर किसके साथ करेंगे, इसलिए उसको भुजगार नहीं कहेंगे। क्योंकि विवक्षित मार्गणा के प्रथम समय से द्वितीय समय में जो अधिक बंद होता है उसकी भुजगार संज्ञा है, इसलिए दो विग्रह से जन्म लेने वाले के भुजगार का एक समय और तीन विग्रह से जन्म लेने वाले के भुजगार के दो समय प्राप्त होते हैं। यही कारण है इन दोनों मार्गणाओं में सात कर्मों के भुजगार पद का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। और यहाँ इन दो मार्गों में आयु बंध का सवाल नहीं। शेष नरक गति से लेकर असंगी तक की मार्गणाओं में ओह के समान भंग है। इतनी विशेषता है कि किन्हीं मार्गणाओं में सात कर्मों का अवक्तव्य पद नहीं है, क्योंकि सात का अवक्तव्य कब होता है, श्रेणी में। अपगत वेदी जीवों में सात कर्मों का भंग ओह के समान है, इतनी विशेषता है। इनमें मौनी कर्म के अवस्थित पद का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात समय है। सात कर्मों के लिए नहीं, वो तो अवक्तव्य भी है, उस अपेक्षा से बता दिया उन्होंने।
नहीं, पर अवस्थित बताया, तो श्रेणी में अवस्थित किया।
श्रेणी में कुछ भी हो सकता है ना। अन्य में हाँ योगी की बात है, परंतु अन्य तरफ वो में वो तो 11 और 15 समय लिए थे, वो यहाँ नहीं घटित कर रहे मुनि में। इसी प्रकार सूक्ष्म सांप्राय संहिता संयत जीवों में, सूक्ष्म सांप्राय संयत कहना था कि दो मार्ग ने बताने थे, एक ऊपर क्या लिखा शेषानवरी केशन जी सत्यनम अवगत सत्यनम को मुझे क्या कहना है, सूक्ष्म सांप्राय संयत कहना चाहिए था, संता संयत हुआ ये संता शब्द निकालना है सूक्ष्म सांप्राय संयत जीवों में। छह कर्मों का काल जानना चाहिए, यानी वहां पर भी छह का सात समय सात कर्मों का तो सात समय घटित किया, ऊपर श्रेणी में घटित किया अवस्थित। उपशम समय दृष्टि और समय मिथ्या दृष्टि जीवों में सात कर्मों के अवस्थित पद का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात समय है। यानी जो जो अंतर्मुत वाली है अपगत वेति में भी सात समय बताया ना,
वो तो बॉडी का होगा तो बाकी का भी सात समय ही हो जाएगा ना।
बाकी अवगत जो मैंने सात कर्मों का भंग उसके समान बताया और मोनी के लिए सात समय लिया, सूक्ष्म सांप्राय में छह कर्मों के लिए सात समय लिया। इसका विशेषार्थ कुछ है क्या बताएंगे देखेंगे। विशेषार्थ 57 पेज पर, यहाँ नरक गति से लेकर असंगी तक की शेष मार्गणाओं में आठों कर्मों के जहाँ जितने पद संभव है उनका भंग ओघ के समान प्राप्त होने में कोई बाधा नहीं आती, इसलिए वह ओघ के समान कहा है। मात्र जिन मार्गणाओं में उपशम श्रेणी की प्राप्ति संभव नहीं है उनमें सात कर्मों का अवक्तव्य पद नहीं होता, इसलिए उनमें सात कर्मों के अवक्तव्य पद को छोड़कर शेष पदों का और आयु कर्म के सब पदों का काल कहना चाहिए तथा अपगत वेदी जीवों में सात कर्मों का भंग ओघ के समान होकर भी यहाँ मोनी कर्म के अवश्य पद का उत्कृष्ट काल सात समय ही प्राप्त होता है, इसलिए इनमें ओघ से इतनी विशेषता जाननी चाहिए तथा सूक्ष्म सांप्राय संयत जीवों में यही विशेषता छह कर्मों के अवस्थित पद की अपेक्षा भी जाननी चाहिए। इसी प्रकार उपशम समय दृष्टि और समय मिथ्या दृष्टि जीवों में भी सात कर्मों के अवस्थित पद का उत्कृष्ट काल सात समय ही प्राप्त होता है। इसका कारण तो हमारे ख्याल में नहीं आया, वो 11 और 15 कैसे कैलकुलेट किया, आगे कहीं बात आएगी देखेंगे। ये अंतरानुगम भुजगार चार आया पहले ये देखे ना सत प्ररूपण समुत्कीर्त ये स्वामित्व काल और ये अभी अंतर भुजगार संबंधी अंतर, यानी भुजगार कर रहा है तो बीच में या तो अल्पतर करेगा या अवस्थित करेगा तो उसका अंतर पड़ेगा। अंतरानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओव और आदेश। ओव से सात कर्मों के भुजगार और अल्पतर बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुख है। जैसा काल था प्रतिपक्षी उनका वैसे इनका अंतर। अवस्थित बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण। हाँ, यानी वही का वही नहीं किया, वो अन्य अन्य स्थानों में भटकता रहा। कर्तव्य बंध का जगन नियंत्र अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर उपार्थ पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। इन उपशम श्रेणी की अपेक्षा हो गई। उपांत यानी उपार्ध कुछ कम अर्ध पुद्गल, उप यानी नजदीक, अर्ध पुद्गल के थोड़ा नजदीक। आयु कर्म के गुजगार और अल्पतर बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर है। हमने देखा था ना कि आयु का बंध ही नहीं हुआ तो यहाँ अंतर पूर्व कोटि पहले बंधी और वहां 33 सागर के लास्ट में। अब आयु कर्म का ही अवस्थित बंध का जघन्य अंतर एक समय है आयु कर्म का अवस्थित बंध और अंतर चल रहे हैं। अवस्थित का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण। अवक्तव्य बंध का जगन निरंतर अंतर्मूल और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 साल।
कौन सी बात का आयु वही की वही आयु
नहीं नहीं ऐसा है। देखो ये हम क्या देख रहे हैं आयु कर्म में भुजगार यानी आयु कर्म कर बांध रहा था कोई भुजगार करता रहा बीच में एक समय के लिए उसने अवस्थित किया फिर भुजगार किया तो भुजगार का अंतर एक समय। अभी कहेंगे कोई किसी ने भुजगार किया और फिर अल्पतर किया या अवस्थित किया फिर आयु का बंध रुक गया फिर आयु बंध ही नहीं तो उत्कृष्ट अंतर कितना होगा तो साधिक 33 सागर यानी अंतर पूर्व कोटि पहले आयु बांधी फिर आयु का बंध ही नहीं हुआ 33 सागर के लास्ट में यानी वहां जाकर उसने भुजगार का या अल्पतर का जो बंध किया तो उसका अंतर समाप्त हो गया। ये भुजगार अल्पतर की बात है। अवस्थित के लिए जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग। अवस्थित यानी उसने किया ही नहीं ये सभी कर्मों में हमने इतना ही अंतर देखा था। किसी जीव ने अवस्थित किया बीच में उसने अवस्थित किया ही नहीं कभी अल्पतर कभी भुजगार ही करता रहा तो उसका इतना अंतर पड़ेगा। अवक्तव्य बंध का आयु के अवक्तव्य बंध का जघन्य अंतर अंतर्मूल और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर है। जो अभी हमने भुजगार अल्पतर के लिए थे साधिक 33 सागर वैसे अवक्तव्य का यानी क्योंकि आयु बंधी ही नहीं इतने काल तक। विशेषार्थ सात कर्मों के भुजगार और अल्पतर बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त होने से ये काल की बात पूछ रहे बता रहे यह इनका जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त का इसका अर्थ समझ में आती है। भुजगार का अंतर कब होगा जब कोई अल्पतर कर रहा है तो अल्पतर लगातार कितने ही समय तक हो सकता है अंतर्मूर्त तो भुजगार का उत्कृष्ट अंतर कितना है तो अंतर्मूर्त अल्पतर के लिए ऐसा ही सोचना। इनके अवस्थित बंध का कारणभूत योग एक समय के अंतर से भी होता है और जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण काल के अंतर से भी होता है। इसलिए इसका जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण कहा है। आयु कर्म के अवस्थित बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए यानी अवस्थित के लिए ये होगा भुजगार अल्पतर के लिए नहीं। ये जो बताया ना जगत श्रेणी का असंख्यात भाग ये किसी भी कर्म के अवस्थित बंध का इतना अंतर हो सकता है एक समय तो बता दिया ये उत्कृष्ट अंतर की बात। सात कर्मों का अवक्तव्य बंध उपशम श्रेणी से उतरते समय होता है इसका जघन्य अंतर अंतर्मूर्त अवक्तव्य के लिए। उपशम श्रेणी से उतरा, फिर दोबारा चढ़कर दोबारा उतरा, तो दोबारा अवक्तव्य हुआ, तो एक अंतर्मूर्ति में हुआ। और उत्कृष्ट अंतर वो पार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण होता है, यानी कुछ कम पार्ध पुद्गल परिवर्तन, इसलिए उक्त प्रमाण कहा है। आयु कर्म के भुजगार और अल्पतर पद का आयु कर्म के भुजगार और अल्पतर नीचे से तीसरी लाइन, जघन्य अंतर एक समय स्पष्ट ही है, क्योंकि इन पदों के योग्य योग एक समय के अंतर से हो सकता है। और आयु कर्म का उत्कृष्ट बंधांतर, आयु कर्म का उत्कृष्ट बंधांतर यानी आयु जो मूल प्रकृति बन रही है, प्रकृति बंध का उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर पहले बतलाए हैं, यानी वन थर्ड पूर्व कोटि पहले भव का, और फिर 33 सागर के लास्ट में जाके उसने आयु फिर बांधी। इसलिए यहाँ इन पदों का उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर कहा है। इसी प्रकार यहाँ आयु कर्म के अवक्तव्य पद का जघन्य अंतर एक समय ने एक अंतर होना चाहिए, आयु बंध दो अपकर्ष के बीच में बंध ही, तो एक समय एक अंतर्मुहूर्त अंतर होगा ना, ये गलती से एक समय पड़ा है। क्योंकि ओरिजिनल में अंतर्मुहूर्त लिखा है ना, देखो अंतरानुगम के पहले पैराग्राफ में लास्ट में आयु की बात है ना, यहाँ पर अवक्तव्य बंध का जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर। आगे पढ़े ना, नारकियों में सात कर्मों के भुजगार और अल्पतर पद का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त है। अवस्थित पद का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर एक अंतर्मुहूर्त तथा दो समय कम 33 सागर है। देखो कैसा लिखा है, अवस्थित पद अर्लिएस्ट नारकी को कब हो सकता है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर, जब गोलमान योग शुरू हो जाता है, तो उसके पहले का जो है वैकृत मिश्र वाला उसमें तो भुजगार ही था, अवस्थित वहां नहीं हो सकता, भुजगार यानी वो भुजगार हुआ फिर शरीर पर्याप्ति पूरी हुई, वहां जितना हुआ फिर दूसरे समय में उतना ही हुआ तो अवस्थित हुआ, यानी यहाँ एक अंतर्मुहूर्त गया एक समय के कंपैरिजन में दूसरे समय, यानी वहां एक समय और लास्ट में फिर अवस्थित करना है, इसे दो समय तो लगातार उतना का उतना चाहिए। कल में नहीं अंतर्मुहूर्त और दो समय क्यों कम कर दिए, अवस्थित कहने के लिए दो समयों में कंपैरिजन करनी चाहिए, इसलिए शुरुआत के दो समय लास्ट में, और शुरुआत में उसका अवस्थित अर्लिएस्ट कब होगा, जब गोलमान शुरू होगा तब, इन्हें एकांत वृद्धि वाला और उपपाद वाला वो काल छोड़ देंगे,
वहां
अंतर्मुहूर्त वहां इन्हें एकांत वृद्धि का अंतर्मुहूर्त छोड़ देना, अवश्य देखो उत्कृष्ट अंतर एक अंतर्मुहूर्त तथा दो समय कम 33 सागर, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, यानी पहले अंतर्मुहूर्त में तो एकांत वृद्धि होता है, फिर शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर गोलमान, द्वितीय समय में अवस्थित होगा। फिर आयु के अंत में अवस्थित। यह ऐसा भी ले सकते, दो समय बताए ना, पहला उपपात का एक समय अलग गिनकर एकांत वृद्धि का अंतर्मुख का अलग गिना होगा, तो भी हो सकता
है।
कंपैरिजन पर लास्ट में जो कंपैरिजन होगी
वो
तब भुजगार हुआ, तो उसके पहले कितना हुआ, बराबर दोनों ओर कंपैरिजन के लिए दोनों ओर एक एक समय, एक एक समय देखो, यानी यहाँ तो एकांत वृद्धि हुई, फिर एक समय में जितना बंद हुआ उतना ही दूसरे समय में हुआ, तो पहला एक समय छोड़ना पड़ेगा ना, जिसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा वो एक समय छोड़ना है, लास्ट में भी अंत में जितना एक समय यहाँ बंद किया उतना ही दूसरे समय में किया, उतना ही किया।
दोनों
एक से समय एक समय, क्योंकि कंपैरिजन के लिए हम उतना का उतना ये कहना चाहते हैं ना, अवस्थित के लिए। यानी अंतर्मूर्त क्यों छोड़ा, तो एकांत वृद्धि वाला छोड़ा। और अंत में जो अवस्थित कहलाएगा उसको भी छोड़ना पड़ेगा हमको। यानी अंतिम समय में अवस्थित हुआ ना,
वो एक समय
वहाँ छोड़ना है, अवस्थित हुआ उसके पहले अंतर कितना पड़ा, अवस्थित होते ही उसका अंतर समाप्त हुआ, यानी अंतिम समय अवस्थित वाला लिया तो अंतिम समय भी माइनस करना, और पहले समय शरीर पर्याप्ति पूरी होना वो तो पहला समय था, उसके पश्चात अवस्थित हुआ इसलिए वो एक समय छोड़ना। अब नारकियों में ही बात चल रही है, आयु कर्म के तीन पदों का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 6 महीना है, यानी जो प्रकृति बंध का अंतर है। अवक्तव्य पद का जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त, क्योंकि अंतर्मुहूर्त के अंतर से बन सकती है ना आयु दो अपकर्ष के काल के बीच में, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 6 महीना। ये तीन पद यानी कौन से लिए उन्होंने, भुजगार अर्पित और अवश्य। इसी प्रकार सब नारकियों में अपना अपना अंतर जानना चाहिए, अपना अपना नहीं हो जो यहाँ जो 33 अगर कह दिया वो अपनी अपनी स्थिति बताना, विशेषार्थ वो उसे 7 कर्मों के भुजगार और अल्पतर पद का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर घटित करके बतला आए हैं, उसी प्रकार यहाँ भी इनका जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त घटित कर लेना चाहिए। यानी वो लगातार वो भुजगार अल्पतर होता ही रहता है हमेशा। इनके अवस्थित पद का जघन्य अंतर एक समय स्पष्ट ही है, तथा इसका उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त और 2 समय कम जो 33 अगर बतला है, सो उसका कारण यह है कि उत्पन्न होते समय वैकृत मिश्र कायोग के रहते हुए अवस्थित पद नहीं होता, उसके बाद शरीर पर्याप्ति के प्राप्त होने के प्रथम समय में जो बंद हुआ वही उसके अगले समय में भी हुआ, और मध्य में इनका भुजगार और अल्पतर पद होता रहा, फिर मरण के समय पुनः अवस्थित पद हुआ। इस प्रकार 2 समय अवस्थित के और प्रारंभ का अंतर्मुहूर्त काल 33 सागर में से कम कर देने पर अवस्थित पद का उत्कृष्ट अंतर काल आता है, अतः वह उक्त प्रमाण कहा। यहाँ आयु कर्म के तीन पद वही वही, वही वही कह रहे हैं, उनकी भाषा अलग है। क्या लिखा देखो, ये बात उन्होंने 4थी लाइन से शुरू की है बताना। नहीं, वहाँ तो एकांत वृद्धि का अंतर्मुहूर्त है, वो कम करना है, नहीं, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने का समय पहला समय, यानी वैकृत मिश्र के रहते हुए अवस्थित पद नहीं होता, वही ये इनकी भाषा में बताया। और मेरी भाषा में मैंने बताया कि वैकृत ये मिश्र का योग है, यानी शरीर पर्याप्ति चल रही थी, पूर्ण होते ही वैकृत का योग चालू हो जाएगा और वहीं पर गोलमान योग चालू हो जाएगा। पहले समय में जितना हुआ दूसरे समय में उतना ही हुआ, तो एक समय वहां कट हो गया आखिर। यहाँ लिखा ना, शरीर पर्याप्ति के प्राप्त होने के प्रथम समय में जो बंद हुआ वही उसके अगले समय भी हुआ। इसके मध्य में केवल गुजगार और अल्पतर होता है, मरण के समय पुनः अवस्थित पद हुआ। अवस्थित के दोनों समय हुआ, दोनों ओर घटा दिया। अब आगे पढ़ेंगे। यहाँ नरकियों में आयु कर्म के तीन पद एक समय के अंतर से हो सकते हैं। जब आयु का बंध हो रहा है तो कभी भुजगार, कभी अल्पतर, कभी अवस्थित, तो एक समय के अंतर से भी हो सकते हैं। और कुछ कम 6 महीना के अंतर से भी हो सकते हैं, क्योंकि पहले अपकर्ष में आयु बंदी और अंत में बंदी, इसलिए इनका जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 6 महीना का है। एक समय केवल वो भुजगार, अल्पतर और अवस्थित के लिए, अवक्तव्य के लिए नहीं। इसी प्रकार इसके अवक्तव्य पद का उत्कृष्ट अंतर भी कुछ कम 6 महीना घटित कर लेना चाहिए, मात्र इसके अवक्तव्य पद का जघन्य अंतर जो अंतर्मुख कहा है, सो इसका कारण यह है कि 2 बार आयु कर्म के बंध में जघन्य अंतर अंतर्मूर्त प्रमाण प्राप्त होता है। यह सामान्य नारकियों की अपेक्षा अंतरकाल का विचार हुआ। प्रत्येक पृथ्वी में इसी प्रकार अंतरकाल प्राप्त होता है, मात्र अवस्थित पद का उत्कृष्ट अंतर एक अंतर्मूर्त और 2 समय कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण जान लेना चाहिए। उसका कारण हमने जो बताया, ये जो 33 सागर बताया वो 7वें नरक की अपेक्षा बताया, जो सामान्य नारकियों में भी वही कथन होगा, पर अन्य नरक में अपनी अपनी जो स्थिति है उत्कृष्ट वहां की उसको हाँ बताएंगे सब। पहले नरक में पहले
नरक में
एक सागर, दूसरे 3,
तीसरे में
7,
दस,
चौथे में 10,
पांचवे
में 17, छठे में 22, नहीं 1, 3, 7, 10, 17, 22 और वो 33 हमने देखे। अब 3 अंशों में ख्याल में आ रही है ना, मत कैसे सोचना है। 7 कर्मों का भंग ओग के समान है। देखो जब हम उत्कृष्ट की बात कर रहे थे तो वो संगी पंचेंद्रिय उत्कृष्ट कर रहा है, मतलब भुजगार करना है तो जो जितना भी बंद कर रहे हैं जघन्य हो या उत्कृष्ट हो, भुजगार अल्पतर वहां तो होते ही रहेंगे ना, इसलिए वहां एक इंद्रिय में गया और नहीं किया ऐसा नहीं ले सकते यहाँ पर। उत्कृष्ट के लिए तो हमने वो सोचा था अंतर, तो 7 कर्मों का भंग ओग के समान है। ओग के समान क्या है, तो भुजगार और अल्पतर का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त, अवस्थित का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर श्रेणी का संख्या था, वो यहाँ पर भी घटित होगा, भले वो एक इंद्रिय में रहे किसी मार्ग न में। मात्र अवक्तव्य पद को छोड़कर यह अंतरकाल है, क्योंकि 3 अंशों में 7 कर्मों का अवक्तव्य नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा था इसका अवक्तव्य तो श्रेणी में होगा। आयु कर्म के भुजगार और अल्पतर पद का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर साधिक 3 पद है। आप तेजर इसको घटित करो, आयु कर्म का साधिक तीन पल्ले कैसे सोचेंगे आप?
हाँ,
पूर्व कोटि वाले तिर्यंश ने वन थर पूर्व कोटि बाकी थे तो तीन पल्ले की तिर्यंश की आयु बांधी, क्योंकि तिर्यंश में से तिर्यंश रखना और वो भूमि में अंत में जाके उसने आयु का बंध किया तो साधिक तीन पल्ले होगा, यानी वंतर पूर्व कोटि और तीन पल्ले। अभी उसके जो अंतर्मुत कम करना वो दोनों और कर सकते हैं। अवस्थित पद का भंग ओग के समान है। ओग में हमने देखा था एक समय हाँ, और जगत श्रेणी का असंख्या। अवक्तव्य पद का आयु के अवक्तव्य की बात, जघन्य अंतर अंतर्मूर्त, क्योंकि अंतर्मूर्त के अंतर से वो बनता है और उत्कृष्ट अंतर साधिक तीन पल्ले जो अभी हमने देखा। एक चंतिर्यंच सामान्य की बात है। पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में सात वर्णों के भुजगार और अल्पतर पद का भंग के सामान्य एक समय से अंतर्मूर्त। अवस्थित पद का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक को अधिक तीन पल्ले, यानी उसकी काय स्थिति लेना, शुरुआत में अवस्थित किया और अंत में जाके फिर किया। आयु कर्म के भुजगार अल्पतर और अवक्तव्य पद का भंग सामान्य तिर्यंचों के समान। आयु कर्म का भुजगार अल्पतर तो एक समय के अंतर से होता रहता है और अधिक अंतर कब पड़ेगा तो दो बार आयु बंधे उसमें जो अंतर होगा उसमें तो मिनिमम अंतर मूर्त का अंतर पड़ेगा। मैक्सिमम के लिए कैसा? वन थर्ड पूर्व कोटि प्लस तीन पल्ले। तथा अवस्थित पद का भंग ज्ञानावरण के समान है, यानी काय स्थिति जघन्य एक समय और उत्कृष्ट काय स्थिति। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त को में पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त कहने से वो लब्धि अपर्याप्त चीज है। सात कर्मों के भुजगार अल्पतर और अवस्थित पद का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुक्त है। आयु कर्म के तीन पदों का भंग ज्ञानावरण के समान है, यानी ये जो सात कर्मों के अभी हमने देखा ना कि भुजगार अल्पतर और अवस्थित का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुक्त है। यहाँ अंतर्मुक्त क्यों कहा? क्योंकि ये मार्गणा का लगातार काल अंतर्मुक्त है। तथा अवक्तव्य पद का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुक्त है, यानी आयु कर्म अनेक बार बनती है परंतु ये अंतर्मुक्त, यानी एक ही भूमि हमें अंतर्मुक्त ले सकते हैं और उत्कृष्ट अंतर के दो सक्सेसिव भर ले सकते। इसी प्रकार अर्थात पंचेंद्रिय तिर्यंच अवक्तव्य कैसे लेना? हाँ, यानी एक ही भाव में उसने दो बार आयु बांधी तो उसके बीच में, और उत्कृष्ट के लिए हर आयु में हर भाव में तो आयु बांधेगा तो लगभग पर्याप्त के एक भाव में आयु बांधी वन थर्ड बाकी का तक और दूसरे भाव में वो लास्ट में बांधी फिर भी अंतर्मुक्त होगा। इसी प्रकार अर्थात पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त कोम के समान त्रस और स्थावर सब अपर्याप्त तथा सब सूक्ष्म पर्याप्त और अपर्याप्त जीव में जानना चाहिए। सूक्ष्म अकेला पर्याप्त अलग और सूक्ष्म अपर्याप्त अलग, यानी सभी मार्गणा अंतर्मूर्ति है। विशेषार्थ पढ़ लेते इसको। तिर्यंचों में सात कर्मों का अवक्तव्य पद संभव नहीं है, क्योंकि यह पद उपशम श्रेणी से गिरते समय होता है। शेष भंग ओग के समान यह स्पष्ट ही है। इन्हें भुजगार अल्पतर का हमने देखा था। यहाँ आयु कर्म का बंधांतर यानी बंध का अंतर साधिक तीन पल्य है, इसलिए इसके भुजगार और अल्पतर पद का उत्कृष्ट अंतर उक्त प्रमाण है। इनका जघन्य अंतर एक समय स्पष्ट ही है, यानी जहाँ बंध हो रहा है एक समय के अंतर से भुजगार या अल्पतर हो सकता है। ओग से आयु कर्म के अवस्थित पद का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अवस्थित के लिए जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण कहा है, सो यह अंतर तिर्यंचों में ही घटित होता है। अतः इसे ओग के समान जानने की सूचना की है, यानी तिर्यंच में रहने का बड़ा काल है और इसलिए जगत श्रेणी का असंख्यात भाग इस मार्गणा में घटित होगा। तिर्यंचों में आयु कर्म का दो बार बंध कम से कम अंतर मुहूर्त के अंतर से और अधिक से अधिक साधिक तीन पल्य के अंतर से होता है, अतः यहाँ इसके अवक्तव्य पद का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर क्रम से उक्त प्रमाण कहा है। पंचेन्द्रिय तिर्यंच त्रिक में इनकी काय स्थिति को ध्यान में रखकर अवस्थित पद का उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्व अधिक तीन पल्य कहा है अवस्थित के लिए। आयु कर्म के अवस्थित पद का भंग ज्ञानावरण के समान कहने का भी यही कारण है। अवस्थित के लिए उसमें भी यही बात होगी, क्योंकि हर बार आयु बनती है तो अवस्थित नहीं भी होगा, इसलिए शुरुआत में एक बार और लास्ट में एक बार काय स्थिति के ऐसा लिया। आयु कर्म के अवस्थित पद का भंग ज्ञानावरण के समान कहने का भी यही कारण है। पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्त कोण की काय स्थिति अंतर्मूर्त है, यानी लगातार लगातार भी होगे तो अंतर्मूर्त होगा, और आयु कर्म का दो बार बंध कम से कम एक अंतर्मूर्त के अंतर से होता है, यह देखकर इनमें आठों कर्मों के तीन पदों का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त तीन पद ने भुजगार अल्पतर और अवस्थित आयु में भी घटित होगा। और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूल तथा आयु कर्म के अवक्तव्य पद का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूल दो बार आयु बनती तब यहाँ अन्य सब अपर्याप्तकों में तथा सूर्य सूक्ष्म पर्याप्तकों में यह व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनका भंग पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के समान कहा। यही रुकेंगे हम। जावानी के ज्ञान से सूझे।